आपका कहने का मतलब ये अध्यात्म मार्ग पर चलने के लिए संसार में कैसे जीना चाहिए? ये तो हम सब जानते ही हैं कि जीव किस चीज के बंधन में, महाराज जी उसका मूल कारण कह रहे हैं कि अपने आप को जीव कर्ता समझता है और कर्ता समझने के कारण उसके अंदर ये कर्म करने की जो प्रेरणा है वो उसके अंदर उठती रहती है और जो कर्म करने की प्रेरणा उठती है वो उसकी वासना के कारण है, इच्छाओं के कारण है या तीन गुणों से युक्त जो सत्वगुण तमोगुण रजोगुण का स्वभाव है उसके कारण उसके अंदर विभिन्न प्रकार की इच्छाएं उठती हैं और उन इच्छाओं के कारण ये जीव बेचैनी महसूस करता है और उस बेचैनी से मुक्त होने के लिए वो उन इच्छाओं की पूर्ति की अपनी इंद्रियें देह और संसार के द्वारा पूरी करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में उसका पूरा जीवन निकल जाता है परंतु ना स्वभाव का अंत होता है, ना इच्छाओं का अंत होता है, ना कर्म का अंत होता है, ना कर्म फल का अंत होता है, बल्कि जो कुछ भी वो कर्ता बन के करता है इनके संस्कार और गहरे उसके होते चले जाते हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं कि जो भी संसारिक मनुष्य है जिस हालत में पैदा होता है उससे भी बुरी हालत में वो देह का त्याग करके संसार से विदा होता है और फिर जो संस्कार उसने बना लिए, जो स्वभाव बना लिया अगली देह में, फिर उसको वैसा ही मिल जाता है। तो अगले जन्म में भी फिर उसकी जो इस जन्म की प्रक्रिया थी वो भी वही रिपीट होती है और जो कुछ भी कर्म फल वो नहीं भोग पाया है उसमें से एक पैकेज प्रारब्ध के रूप में अगली बर्थ में उसको मिल जाता है। वहाँ उन कर्मों को करने के लिए भी मजबूर होता है, उन फल को भोगने के लिए भी मजबूर होता है जो प्रारब्ध के अधीन है, लेकिन पूरी जिंदगी फिर भी यही समझता रहता है कि करने वाला मैं हूँ, जैसे चाहूँ कर सकता हूँ और जैसे चाहूँ फल प्राप्त कर सकता हूँ। उसको जो संसारी व्यक्ति है उसको दूर दूर तक ये समझ नहीं होती कि तू प्रभु हुक्म के अधीन जी रहा है, संसारी व्यक्ति को इस बात की समझ नहीं होती। जो आध्यात्मिक व्यक्ति है या यूँ कह लें कि जिसने ईश्वर प्राप्ति के लिए जीना है या इस कर्म बंधन या वासना के बंधन से मुक्ति प्राप्त करनी है, वो व्यक्ति इस विज्ञान को गहराई से शास्त्रों के द्वारा, गुरु के द्वारा सीखता है पहले। तो अध्यात्म क्या है कि इस स्वभाव से ऊपर उठना, सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी स्वभाव से ऊपर उठना। जब स्वभाव से ऊपर उठेगा तो डिजायर से भी ऊपर उठ जाएगा वो। तो इसका मतलब जीव ने अपने बंधन को पूरी तरह से खत्म करना है जो तीन गुणों से युक्त है, पांच विकारों से युक्त है जिसके वशीभूतों का सारी इच्छा उसके अंदर उठ रही है। तो ये इच्छाएं उठती कहाँ हैं उसकी, ये संस्कार बनते कहाँ हैं उसके, स्टोर कहाँ रहते हैं? तो वो जो ऑर्गन है जहाँ ये स्टोर रहते हैं उसका नाम है मन। और महाराज जी कह रहे हैं कि प्रेमी ये गुणों का परिवर्तन निरंतर प्रकृति में होता रहता है, कभी सत्वगुणी स्ट्रांग है, कभी रजोगुणी स्ट्रांग है, कभी तमोगुणी स्ट्रांग है, इसकी करंट जो है वो चलती रहती है। आप देखते होंगे, सिमरन भी करते होंगे, कभी मन लगता है कभी नहीं लगता है, आप वैसे ही हो, लेकिन किसी दिन आपका बड़ा अच्छा सिमरन होगा, किसी दिन बिल्कुल मन नहीं लगेगा। तो क्या है कि जो गुणों का जो चक्र है, जिस दिन मान लिया तमोगुण आपका स्ट्रांग हो रहा है, उसकी धाराएं चल रही हैं, तो कल कर लेंगे, सो जाते हैं, मतलब कि पोस्टपोनमेंट आपका चलता रहेगा, ऐसा मन करेगा कि बस कुछ मत करो, पड़े रहो, एक लेथार्जिकनेस आपके अंदर घर कर जाती है। तो वो है क्या, तमोगुण का प्रभाव है। तो इसी प्रकार जो है कभी चंचलता बढ़ती है, वो रजोगुण का प्रभाव है। कभी सिमरन करने को मन करेगा, शास्त्र पढ़ने को मन करेगा, अच्छी संगत करने को मन करेगा, तो वो सतोगुण का प्रभाव है। इस प्रकार से ये प्रभाव आपके अंदर निरंतर बदलते रहते हैं। तो जो इस गुणों के प्रभाव को शास्त्रों के द्वारा अच्छी तरह से समझ लेता है, तो फिर वो हर प्रकार से सतोगुणी बनने की कोशिश करता है। किसी भी स्थिति में वो संतुष्ट नहीं होता, जिस स्थिति में भी है उससे ऊपर उठने की वो निरंतर कोशिश जारी रहती है उसकी। जो आम संसारी है वो देखा नहीं कि अभी अच्छा कर्म करेंगे, फिर 10 दिन फिर घोर संसार में फंस जाएंगे, तो उनको कहाँ होश है। 5% सतोगुणी कर्म किया, पता लगा ये है 25% रजोगुणी कर्म कर दिया, तो संस्कार आपके रजोगुण के बने या सतोगुण के बने? डोमिनेट तो आपको फिर रजोगुणी करेगा। तो जो होश में बुद्धि है, जो जीव होश में है, वो निरंतर सत्कर्म करने की कोशिश करता है, सतोगुणी कर्म करने की कोशिश करता है। तो इस प्रक्रिया का जो महाराज जी ने वृतांत लिखा है या हमारे लिए मार्गदर्शन किया है, वो यही कह रहे हैं इन गुणों से ऊपर उठने के लिए कि प्रेमी पहले तो जो गलत कर्म करता था, उसका पता है गलत है, उस गलत कर्म को करना छोड़ दो। उसके बाद वो आगे कह रहे हैं जो ठीक कर्म है उसको तो मर्यादा में कर, माने कमाई भी करनी है, ठीक करनी है तुम्हें, लेकिन मर्यादा में कर। भोग भी इकट्ठे करने हैं, डिजायर पूरी करनी है, तो वो भी मर्यादा में पूरी कर, देख किस चीज की जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं है। तो हर मामले में वो मर्यादा की बात करते हैं, अर्थात अपने आप को सिकोड़ने की बात करते हैं। सिकोड़ने का मतलब क्या हुआ कि इच्छाओं के अंदर तेरी कमी आनी चाहिए, जैसे जैसे आयु तेरी बढ़ रही है, इच्छाओं के अंदर तेरी धीरे धीरे संसार की इच्छाओं की कमी होनी चाहिए। और ये सब इच्छाएं कहाँ जाके इकट्ठी हो जाती है आपकी, फिर सतोगुण की जो इच्छा है, ईश्वर प्राप्ति की जो इच्छा है, वो आपकी स्ट्रांग होती चली जाती है। तो इसके बाद वो अगली कहते हैं कि तू संसार में कर्तव्य भाव से जी, अभी तू इच्छा के भाव से जी रहा है, अब तू केवल कर्तव्य भाव से जी कि जहां तू है, मान लिया परिवार मेरा है तो बच्चों का पालन करना, पत्नी की देखभाल करना मेरा कर्तव्य बनता है, उनकी एजुकेशन का ख्याल रखना मेरा कर्तव्य बनता है, तो मैं और मेरा भाव से नहीं कि मेरा बच्चा है मैं इसको ये बनाऊंगा, ना ना, जो तेरी कैपेसिटी है, जो तेरे संसाधन है, उसके अंदर जो तेरा कर्तव्य बनता है, उस कर्तव्य के अनुसार तू उनको पढ़ाने की, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर। जबकि तेरे अंदर ये भाव बना रहना चाहिए कि इनका जीवन ईश्वर के हाथ में है, मेरे हाथ में। किस रूप में है ईश्वर के हाथ में? वो प्रारब्ध के रूप में है ईश्वर के हाथ। तो आपके अंदर ये भाव जो मैं मेरा का है, ये बैकग्राउंड में चला जाता है, ईश्वर आगे आपके फ्रंट में रहती है। और अंदर से भयभीत नहीं होते हो, चिंतायुक्त नहीं होते हो, क्या होगा पता नहीं क्या होगा, आपको पता है कि इस संसार में यहां पत्ता भी बिना उसकी मर्जी के नहीं हिलता। ये बात तो सत्य है, लेकिन हमारा निश्चय नहीं आएगा इसके ऊपर। ये आपकी स्थिति जब तक अंदर से स्ट्रांग नहीं होगी, सतोगुण वाली, ये भाव आपके अंदर रुकेगा नहीं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे इस मार्ग पर, ये आपके अंदर चिंता फिक्र ये सब कम होती जाएगी। आप खुद देखोगे आपकी डिजायर्स भी काफ़ी काफ़ी जो है वो कम हो गई हैं, बेसिक नीड्स पर ही आ गई हैं ऑलमोस्ट। तो उसके बाद महाजी अगली बात करते हैं, प्रेमी तो संसार में जो कर्म कर रहा है, तो उसमें तू परोपकारी कर्म करने की कोशिश कर, दूसरे का भला करने की कोशिश कर, लेकिन इस होश में रहते हुए कि मैं भला करने वाला कोई नहीं हूं, जब कि तेरे हाथ से किसी का भला हो जाए तो होश रहना चाहिए, प्रभु ने ये सत्कर्म मेरे हाथों से करवाया है और इसका परिणाम भी अर्थात जिसका भला हुआ है उसके द्वारा वो भी प्रभु ने ही उसके प्रारंभ में लिखा था, इसलिए उसका भला हो गया। अर्थात सत्कर्म करने के पश्चात भी आपके अंदर ये भाव रहना चाहिए कि इसका कारणकर्ता ईश्वर है। तो जब आपके अंदर ये भाव रहता है तो सत्कर्म करने के पश्चात भी जो उसका फल हो रहा है, किसी का जो दुख दूर हो रहा है वो फल है ना उसका, तो उस फल के प्रति भी तू निर्लेप रहता है, उसका वेट नहीं करता। भला हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, तू सत्कर्म करता रहता है। इसी प्रकार तेरे स्वार्थ कर्म भी जो करने पड़ते हैं प्रारब्धवश, उसमें भी तेरी यही वो रहती है कि प्रभु मैंने तो कर्तव्य भाव से कर दिया, अब इसका जो परिणाम हुआ, मन के अनुकूल हुआ, मन के प्रतिकूल हुआ, तो मालिक हो, मेरा इससे कोई संबंध नहीं। तो ये धीरे धीरे आपका आपके अंदर निष्कामता आती है, कोई निष्कामता आती है। और जैसे जैसे निष्कामता बढ़ेगी आप देखेंगे अंदर आपके अंदर ईश्वर का प्रेम बढ़ेगा, क्योंकि अब आप ईश्वर पर निर्भर कर रहे हो ना। अभी तो आप अपने कर्म के बल पर, शरीर के बल पर, पैसे के बल पर, लोगों के बल पर आप जो है कर्म कर रहे थे, अब आप ईश्वर के बल पर कर्म कर रहे हो और ईश्वर के हुक्म के अंतर्गत कर्म कर रहे हो कि प्रभु जैसा प्रारब्ध आपने दिया है उसके अनुसार जो भी अपॉर्चुनिटी कम करने की मिल रही है मैं उसको निष्ठा से उसके कर्मफल में वासना ना रखते हुए, अर्थात कर्मफल में समभाव रखते हुए मैं उस कर्म को ईमानदारी से करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप मालिक हो। तो आप देखिए कि जो कुछ भी उसकी सोच है, जो कुछ भी उसकी करनी है, धीरे धीरे कहाँ ले जा रही है इसको, संसार की हर वस्तु से, संसार के हर व्यक्ति से उसको दूर कर रही है, नहीं कर रही है। किस रूप में? फिजिकली दूर नहीं कर रही है, आसक्ति के रूप में वो आपको दूर कर रही है, आसक्ति से दूर कर रही है। और ये आसक्ति से दूर होना आपको कहां जोड़ रहा है? ईश्वर के प्रेम से जोड़ रहा है। जैसे जैसे आपके जीवन में निष्कामता आएगी ईश्वर का प्रेम आपके अंदर गहरा होता चला जाएगा, गहरा होता चला जाएगा। और एक ऐसी स्थिति आ जाती है गहरा होते होते कि ये जीव अपनी इस प्रिय देह तक को भूल जाता है, जब ईश्वर की याद में बैठता है उसकी समाधि लग जाती है। तो क्या है वो समाधि? कि जो ईश्वर कभी कल्पना थी, बाद में पढ़ पढ़ के सुन सुन के उसका निश्चय आया कि वास्तव में वो शक्ति है, जो शास्त्र का मैंने विवेचन किया, शास्त्र पर गहरा मनन किया और जीवन को सुधारा, तो धीरे धीरे जीवन जो दैनिक जीवन सुधरा हुआ कहाँ ले गया आपको? प्रभु के निश्चय को उसने काफी तीव्र कर दिया या पक्का कर दिया। तो प्रभु का निश्चय जब पक्का होता है तब जीव को वास्तव में हर समय यह बोध होने लगता है कि मैं जीव हूं, मैं अपने ही मन, अपनी ही इंद्रियां और अपने ही देह और देह करके संसार के बंधन में हूं। इस बंधन से यदि कोई भी मुक्त कर सकता है तो वह अंतर्यामी ईश्वर ही है, उसके अलावा कोई सत्ता नहीं। और ये जितना भी बंधन है ये 5 विकार और 3 गुणों से युक्त है, जिनमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है, निरंतर। और प्रारब्ध का जाल भी इतना लंबा चौड़ा है, ये हजारों मेरे जन्म हो चुके कि 200-200 साल की आयु भी भोगो तो प्रारब्ध खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि नया प्रारब्ध तैयार कर लेते हो आप वासना के कारण, आपका नया प्रारब्ध तैयार हो जाता है। तो इसीलिए ना ये कर्म कभी पूरे होंगे, ना आपकी वासना कभी पूरी होगी, ना का प्रारब्ध ही कभी पूरा होगा, और यही प्रक्रिया जो जन्म मौत की हमेशा चलती रहेगी। तो इस जन्म मृत्यु की चक्की में मैं कब तक पिसता रहूंगा? तो आप जब शास्त्रों का गहरा मनन करते हो तब आप फिर इस होश में आते हो कि मैं हूं कौन, क्योंकि शास्त्र यही आपकी हेल्प कर रहे हैं, वो कहीं भी नहीं लिख रहे हैं तो जो है वो मनुष्य है, सामाजिक बातें जब तक रहता तो मनुष्य है। तो शास्त्र मनुष्य शब्द का प्रयोग बहुत कम कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं वो जीव का कर रहे हैं या जीवात्मा या बुद्धि का कर रहे हैं। बुद्धि का प्रयोग जब वो जीव के लिए करते हैं तो वो वहां करते हैं जो जानने वाली चीज है। बुद्धि जहां जानने वाली है उस शब्द का प्रयोग वो कर रहे हैं। जो जानने वाली है वही भोगने वाली भी हुई, वो सुख और दुख महसूस करने वाली भी हुई, वही चैन और बेचैनी भी वही महसूस करेगी। तो जो महसूस करने वाली चीज है इसका मतलब उसके अंदर चेतना है, वो जड़ तो नहीं हो सकती। तो जीव जो है इस जड़ देह में खुद चेतन है। अब बताइए चेतन और जड़ का कभी संबंध बन सकता है? मैं इस मोबाइल का, इस चश्मे का संग करूं तो ये मैं यूज तो कर सकता हूं, मैं ये दो एक तो कभी नहीं हो सकते। जड़ वस्तु जड़ ही रहेगी, चेतन हमेशा चेतन ही रहेगा। तो मैं अपने आप को मनन करने के बाद ये पाता हूं मैं चेतन हूं और जड़ के बंधन में हूं। तो जड़ के साथ अपने आप को एक करना और जड़ के लिए जीना, जो डिजायर से मेरी संसार में ये जड़ के लिए डिजायर तो है, तो इससे बड़ी जड़ता क्या होगी मेरी, इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी। इसलिए वाणी आपको कह रही है कि बिना विवेक मानुष जो होई पशु समान जीवन सो होई। पशु ये चिंतन नहीं कर सकता। यदि मैं भी ये संसारी भाव में जी रहा हूं तो मैं भी पशु हूं, फिर मुझमें और पशु में कोई अंतर नहीं। तो मनुष्य में यदि पशु में अंतर है तो इस करके है कि मनुष्य ये जान सकता है, ये समझ सकता है कि मैं चेतन हूं, मैं जीव हूं जो जड़ वस्तु के बंधन में है। वो जड़ क्या है? मन भी जड़ है, इंद्रिया भी जड़ है, देह भी जड़ है और संसार भी जड़ है। और फिर चेतन क्या है? लेकिन ये सारी जड़ चीज एक्टिव है ना। मेरी देह का यदि प्रारब्ध है तो देह प्रारब्ध के अधीन चल रही है ना। मैं तो नहीं जानता प्रारब्ध क्या है, मैं तो अपने हिसाब से प्लानिंग कर रहा हूं, लेकिन उसमें से क्या चीज एग्जीक्यूट हो पा रही है जो मेरे प्रारब्ध में। तो इसकी रचना कौन कर रहा है, इसकी लीला कौन तैयार कर रहा है? अंतर्यामी प्रभु तो तैयार कर रहे ना। इस जड़ देह को चला भी रहे, मैं तो नहीं चला जड़ देह को। कितने इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, कितने इसमें एटम हैं, देखो सबकी गति अपने हिसाब से चल रही है। कितने सेल्स हैं इसके अंदर, सबकी गति अपने हाथ से चल रही है। तो मैं तो कुछ नहीं कर रहा इसमें। तो जो सत्ता इतना एग्जैक्ट इस देह को चला रही है, इसकी पैदाइश है, इसका पालन है, इसकी मृत्यु है, वो सारी साइकिल को घुमा रही है, उस सत्ता के प्रति मैं गाफिल कैसे हो सकता हूं? विचार करके देखो, जो नहीं विचार करता उसके बारे में तो वो तो घोर संसारी मनुष्य है। तो वाणी तो पशु कह ही रही है उसको, और जो मानव बन के पाप भी कर रहा है उसको वो पशु से भी नीच कह रही है। वही वाणी समता विलास में देखिए, वहां लिखा है पशु से भी नीच। पशु तो पशु ही है, मैं पशु से भी नीच हो जाता हूं। जब पाप कर्म करता हूं तो पशु से भी नीच हो जाता हूं। तो ये जो मेरी स्थिति है, जब इस स्थिति को मैं शास्त्र पढ़कर इस पर गहरा मनन करता हूं, तब ये सारी चीजें मुझको जो है अलर्ट करती हैं। तूने कितनी गलतियां की हैं बचपन से लेकर आज तक, तो कितनी गलतियां की हैं, और आगे भी जो तूने प्लानिंग की है वो गलतियां करने की ही की है। जिस उद्देश्य के लिए मानव जीवन तूने जीना चाहिए था, वो उद्देश्य अभी भी स्लिप कर रहा है आगे से। अभी भी वही तो संसारी तरीका ही अपना रहा है जीने के और कर्म करने के। तब इसको होश आती है, जब ये गहरा मनन करता है तब होश आती है। तो आप देखिए कि जो जहां हम फंसे हुए हैं और जहां हमारी गृहस्थी फंसी हुई है या समाज फंसा हुआ है, वो इंद्रिय भोगों में तो फंसा हुआ है ना। कमाते हैं तो इंद्रिय भोगों के लिए, बच्चों को पढ़ाते हैं तो इंद्रिय भोगों के लिए। उनको क्या सिखाते हैं? पढ़ाई कर लो बेटा, बड़ी अच्छी कमाई होगी, बड़ा अच्छा मकान बनाओगे, बड़ी अच्छी कार खरीदोगे, बड़ा अच्छा जो है अपना डोमेस्टिक लाइफ व्यतीत होगी, बड़ी अच्छी सामाजिक लाइफ व्यतीत होगी, वो अच्छी सामाजिक लाइफ क्या होगी, क्लबों में जाओगे, बड़ा सुख भोगोगे। तो इंद्रिय भोगों के लिए ही तो हम उसको पाल रहे हैं और खुद भी उसी लिए पले हैं। तो जो मेरा सर्वनाश का रास्ता है उसको मैं लक्ष्य बना के पला हूं, मेरे माता पिता ने मुझे पला है और मैं माता पिता बनकर अपने बच्चों को पाल रहा हूं उसी सर्वनाश के लिए। तो वो सर्वनाश वाणी आपको याद दिला रही है कि पांच विकार महादुखदाई जले सकल संसारा, सारा संसार इसमें जल रहा है। अब दुनिया को कोई आदमी दिखा रहा है मुझे ये बात? जो इंद्रिय भोग है ये पांच विकार के अंतर्गत आते हैं ना, तो पांच विकार में सारा संसार जल रहा है, ये संसार में कोई जानता है इस बात को? पूरे संसार में कोई आदमी जानता है इस बात को? इस बात को केवल गुरु जानता है। जिसने ईश्वर को जाना है वही इस बात को जानता है, और वही जो उनकी बात सुनने को तैयार है उसको यही बात कहता है कि ये जहर है। इसलिए महाजी संत रविदास में लिख रहे हैं, ये संसार देखने में सुखदाई प्रतीत होता है परंतु अंदर से विष रूप है। जितना ज्यादा सेवन करोगे उतना ही गहरा विष का असर आपके मन और तन पर होगा। तो विष आपके मन की बेचैनी बढ़ाएगा या चैन बढ़ाएगा, विचार करके देखो। तो यदि मैंने गुरु धारण किया है तो मेरी बुद्धि का निर्णय ये होगा या मेरी बुद्धि का निर्णय वो होगा जो समाज का निर्णय है? तो इसीलिए मैंने इसी संसार में निष्काम होके रहना सीखना है इसी संसार में, क्योंकि आप वैसे ही समाज में, वैसे ही संसार में, वैसे ही लोगों के बीच में रहोगे जो आपके प्रारब्ध में है। ये फ्री चॉइस नहीं है आपकी, मैं इन लोगों के बीच में रहूं या उन लोगों के बीच में रहूं, फ्री चॉइस नहीं है आपकी। आप जहां हो, जिस हालत में हो, उसी हालत में रहते हुए आप निष्काम हो सकते हो, उसी हालत में रहते हुए आप ईश्वर की भक्ति कर सकते हो। देखो महर्षि रमण क्या करें, महर्षि रमण के पास एक गृहस्थी आया और महर्षि रमण से बोला कि महर्षि मैं ईश्वर की भक्ति करना चाहता हूं तो मैं यहां एकांत में रहना चाहता हूं, अर्थात उसका मतलब था संन्यास लेना चाहता हूं। तो महर्षि रमण क्या कहते हैं, देखो वो तो त्रिकालदर्शी है, सदगुरु है, तो वो कहते हैं ये काम तो तुम घर पे भी रह के कर सकते हो। अब देखो महर्षि रमण क्या कह रहे हैं, आप तो वशिष्ठ की बात कर रहे हैं ना, राम से वशिष्ठ ने क्या कहा था, आज के युग की बात देखो ना, महर्षि रमण उससे क्या कह रहे हैं, ये काम तो तुम घर पे रह के भी कर सकते हो। तो वो कहता है महर्षि रमण से, महर्षि फिर आपने संन्यास क्यों लिया, वो भी तो संन्यास लेके आ गए थे। अब महर्षि रमण बता रहे हैं उसको कि ये मेरा प्रारब्ध था और तुम्हारा प्रारब्ध यह है कि तुम गृहस्थी में रहोगे, तुम कितनी भी कोशिश कर लो संन्यास ले ही नहीं सकते। अब बताइए, ये तो गुरु जानता है ना कि इसको किस प्रारब्ध के अधीन यहां संसार में भेजा गया है, गुरु तो त्रिकालदर्शी है, वो तो सब जानता है। हम नहीं जानते, हम समझते हैं हम फ्री विल है हमारी, जहां चाहे रह सकते हैं, जहां चाहे जा सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। तो मैं पूरी तरह से प्रार्थ से बंधा हूं, या यूं कहें कि मेरी देह पूरी तरह से प्रार्थ के अधीन है। तो जीव यदि वासना से स्वतंत्र हो जाए तो वो देह से भी स्वतंत्र है, वो कहेगा प्रभु जैसी चलानी है चलाओ, आप चलाओ चाहे प्रभु चलाए आपकी देह को, चलेगी वैसे ही जैसी प्रार्थ में, उसमें अंतर नहीं आएगा, लेकिन आपकी वासना में अंतर आ जाएगा। जैसे बेटा पढ़ गया आपका, उसका प्रारब्ध था, प्रारब्ध ने उसको पढ़वाया, उसको पैसे का भी उपलब्धि हुई, उसको टीचर की भी उपलब्धि हुई, अच्छे स्कूल की भी उपलब्धि हुई, सब चीजें मिली उसको, पेरेंट्स भी वैसे ही मिले जो उसको मार्क पर डाल सकते थे, लेकिन पिता क्या कहता है, मैंने पढ़ाया, मैं नहीं पढ़ाता, तू पढ़ा पाता क्या? तो वो अरेंजमेंट किया प्रभु ने उसके लिए, क्योंकि प्रारब्ध ही वैसा था उसका, लेकिन मैं उसका कर्ता बन गया। अब कर्ता बन गया तो भोगो, फिर वो बड़ा होगा, पिता की आज्ञा नहीं मानेगा, तो मानसिक क्लेश होगा आपको, देखो मैंने इतनी मेहनत करी है, ये मेरी कहना ही नहीं मानता। तो यदि आपने ईश्वर का होके यदि इसका पालन किया होता तो ये बात ही आपके अंदर नहीं आती। कहना नहीं मानता है, ना माने हमारा कोई वास्ता नहीं, अच्छा हुआ मोह कमजोर पड़ेगा हमारा, नहीं मानता कहना तो अच्छी बात है, मोह कमजोर पड़ेगा हमारा, ईश्वर मेरी मदद कर रहा है। आपके सोचने का तरीका ही बदल जाता है बिल्कुल। तो इस प्रकार मैं अपने जीवन को धीरे धीरे प्रारब्ध के अधीन देखता हूं। जो कुछ भी कर्म देह से होते हैं उसको मैं सत्कर्म करने की कोशिश करता हूं, कितने बन पाते हैं वो मैं बात नहीं कर रहा, कोशिश मेरी होती है ईमानदारी से। और जो कुछ भी कर्म का फल होता है उसमें मैं निर्लेप रहने की कोशिश करता हूं, प्रभु जो आपने देना था दे दिया, क्योंकि उसने तो क्या करना है, गुजरान वाला प्रोग्राम व्यतीत करना है, खाना खाना है इसने, जैसा पत्नी ने बना दिया, बस यही कि पता है कि ये नुकसान करेगा, ये हेल्थ के लिए खराब करेगा, तो आप कहते हो भी ये नहीं खाऊंगा, ये नुकसान करेगा, अन्यथा खा लेते हो, नहीं तो नखरी करते रहते थे पहले, आप लड़ते रहते थे, तूने ऐसा खाना बना दिया वैसा खाना बना दिया, अंतर आ गया नहीं आ गया? तो आपके मानसिक क्लेश में अंतर आया नहीं आया? हर एक्टिविटी में यही होगा, हर एक्टिविटी में यही होगा। तो धीरे धीरे व्यक्ति बाहर से सादा होता चला जा रहा है, होता है सादगी के बाद फिर उसके अंदर सत्कर्म का प्रभाव बढ़ता है उसके जीवन में, और उसके साथ साथ जो कर्म फल के प्रति आसक्ति है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ती जाती है, कमजोर पड़ती जाती है, उसकी नीड बेयर मिनिमम रह जाती है। महर्षि रमण की क्या नीड्स थी, एक कॉपिन बांध के रहते थे और जब भूख लगी तो किसी के घर के आगे निकले, ताली बजाई, जो दे दिया हाथ में ही ले लिया उन्होंने, खाया और हाथ से ही पानी पिया, आजादी, फिर चढ़ गए पहाड़ पे अपने, फिर समाधि में बैठ गए जाकर। तो किसी गुरु ने कभी ये नहीं कहा कि मेरी नकल करना, वो गृहस्थी से कह ही रहे हो तो घर में ही रहेगा। तो जिसका जो प्रारब्ध है सत्पुरुष जानते हैं, इसी तरह राम का प्रारब्ध क्या है वशिष्ठ जानते हैं, तो उसी के प्रारब्ध के अनुसार राम को वो कह रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि राम के अंदर ये भावना है ना, मैं जंगल में चले जाऊंगा, लेकिन वशिष्ठ को मालूम है ये जंगल में नहीं जा सकता है, इसका प्रारब्ध तो घर में रहने का है, या जंगल में जब होगा तो जंगल भी जाएंगे। लेकिन खास उपदेश क्या है कि जहां हो जिस हालत में हो वहां निष्काम होने की कोशिश करो, ये है उपदेश सत्पुरुषों का। तुम जहां हो जिस हालत में हो तुम निष्काम हो सकते हो, तुम देह को याद करने के बजाय मन की वासनाओं का चिंतन करने के बजाय तो अंतर्यामी प्रभु की याद कर सकते हो, उसका चिंतन कर सकते हो। लेकिन कब करोगे, जब उसके लिए जियोगे, आपका विवेक इतना स्ट्रांग हो जाएगा जब आप ईश्वर के लिए जियोगे कि मैं जीव हूं, इस मन इंद्रियां देह के बंधन में जी रहा हूं, तो ये मेरी जेल है, तो आप हर पल ये सोचते हो इस जेल से मैं कैसे मुक्त हूं। इस जेल से मुक्त कौन है, अंतर्यामी ईश्वर इस जेल से मुक्त है, वो अंदर हो तो ये भी वो मुक्त है। इसीलिए आप हर पल उस ईश्वर की याद स्वाभाविक रूप में करते हो। अभी तो आप बड़ा जोर लगा के करते हो, स्वाभाविक रूप में आपको संसार की याद आती है, स्वार्थ की याद आती है, लेकिन उसके लिए आप बड़ा सोच विचार करना पड़ता है तब तो ईश्वर की याद करते हो, लेकिन फिर आपको ईश्वर की स्वाभाविक याद आती है। तो जब स्वाभाविक याद आती है तो ईश्वर से आपका ऐसा संबंध बन जाता है कि हर पल आप उस ईश्वर शक्ति का अंदर अनुभव करते हो, वो ईश्वर शक्ति आपका पीछा ही नहीं छोड़ती, हर पल आपका संग उसको मिलता रहता है। तो फिर एक दिन ऐसा आता है किसी अंतर्यामी ईश्वर के साथ आप एक ही हो जाते हो, संसार बंधन से मुक्त, जन्म मरण से मुक्त, और इसी स्थिति के लिए आपको मानव देह दी गई थी, इस स्थिति के लिए ही आपको गुरु दिया गया था, सत्संग दिया गया था, आपको शास्त्र दिए गए थे ताकि इनके अनुसार अपना चिंतन मनन बदल के, अपना लक्ष्य बदल के अपना ये लक्ष्य बना लो जो वाणी कह रही है कि मानव जीवन जो है वो प्रभु प्राप्ति के लिए मिला है, और इसकी सफलता तभी है जब आप प्रभु का अनुभव इस देह के अंदर कर लो। प्रभु के सिमरनकार ने ये दुर्लभ जीवन पाए। तो ये है प्रक्रिया उसकी कर्मों की, जो सारे ऋषि तरह तरह से कह रहे हैं। तो वशिष्ठ राम का संवाद भी यही बात कह रहा है। राम को उस बात का पता नहीं है, वशिष्ठ को उस बात का पता है, तभी वो कह रहे हैं तुम संन्यास लेने के क्यों भाग रहे हो। संन्यास लेने का मतलब राम का एक ही था ना कि ईश्वर प्राप्ति, जो कमी लेके पैदा हुए थे वो, हम अवतार कहते हैं उनको, लेकिन अवतार बाद में बने। वो अवतार तब बनता है जब वो ईश्वर प्राप्ति कर लेता है। जैसे महाजी ने बचपन में कहा मैं अवतार हूं, नहीं कहा। जब उनको आत्मलीनताई मिल गई, ब्रह्म स्थिति मिल गई, तब जाकर उन्होंने ये एक समाज में एक गुरु वाला काम शुरू किया। जनरल सोसाइटी में गुरु बन के विचरे वो, क्योंकि वहां उसकी स्थिति का पता नहीं है। वो ब्रह्म है, वो अद्वैत पुरुष है, वो गुरु खुद अंतर्यामी है, समय वो ईश्वर है वो। तो महाजी तभी कहते थे सदगुरु तो अंतर्यामी, स्थिति बता रही नहीं बता रही गुरु। तो राम ने भी वही स्थिति प्राप्त करनी थी, इसलिए वशिष्ठ को गुरु बनाया था उन्होंने। नहीं तो वशिष्ठ को गुरु बनाने के लिए नाटक करने के लिए थोड़ा बनाया था वशिष्ठ गुरु। हम भले ही कहते रहे कुछ भी, लेकिन राम ने वशिष्ठ को गुरु उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए बनाया था। तो वो स्थिति प्राप्त करने की उनके अंदर बचपन से तड़प थी, इसलिए यूथ एज में ही वो जा रहे थे उसके लिए। वशिष्ठ ने कहा तुम्हें निष्काम होना है, निष्काम तू जहां है जिस हालत में वही निष्काम हो तुम्हें होना सीखना है। तो वो सारी परिस्थितियां तेरे आगे यदि रहें तभी तो निष्काम रहे, तभी तो पक्का होगा। तो इसीलिए विवेक और वैराग्य चाहिए। वैराग्य का मतलब भोगों में राग नहीं। तो भोगों के बीच में रहते हुए भोगों से मैं उपरस हो जाऊं तभी तो वैराग्य कहलाएगा मेरे अंदर। इसलिए वशिष्ठ ने उनको यही उपदेश दिया कि तुम जहां हो जिस हालत में हो वहीं रहो, और यहीं तुम ईश्वर प्राप्ति की कोशिश करो, और जो तुम्हारा देह का प्रारब्ध है उस प्रारब्ध को स्वीकार करो और प्रभु हुकम में जीना सीखो। तो धीरे धीरे अंतर्यामी प्रभु के साथ ये जीव एक हो जाता है और मन इसका उस हालत में निर्मल हो जाता है, अर्थात वासना रहित हो जाता है। तो वासना रहित जीव और ईश्वर ये एक ही चीज है, इसमें कोई भेद नहीं। वहां आके पता लगता है जीव और ईश्वर दो नहीं थे, ये हमेशा एक ही था। जब तक जीव वासना युक्त है तब तक ईश्वर उसके लिए अलग है, ईश्वर उसका पालन कर रहा है, ईश्वर उसके प्राण की रक्षा कर रहा है, ईश्वर उसकी देह की रक्षा कर रहा है। लेकिन जब जीव और ईश्वर एक हो गए, फिर महाज कहते थे प्रेमी ये जीव खुद अपना गुरु आप ही बन जाता है। तो महाज ने कहा नहीं कहा, उस स्थिति में गुरु शिष्य का नाता नहीं रहता, जीव अपना गुरु खुद ही बन जाता है। तो ये है मर्म वशिष्ठ के संदेश का राम के लिए, उस समय का जब वो महल छोड़कर जंगल का रास्ता पकड़ने जा रहे हैं। ओम ब्रह्म सत्यम।